घड़ी सुबह के 5 बजे दिखा रही थी। सारी रात अहाना को सताने के बाद इस वक्त अक्षय उसे अपनी बाहों में भरे गहरी सुकून भरी नींद में सोया हुआ था। पर अहाना की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसकी आंखों में बिखरी हल्की लाली साफ जाहिर कर रही थी कि उसने सारी रात जागकर गुजारी थी। अब भी वो बड़े ही प्यार से अक्षय को देखते हुए उसके बालों में उंगलियां घुमा रही थी। बीते 3 दिनों की थकान का असर था या रात की खुमारी का कि अक्षय गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके लबों पर बिखरी संतुष्टि भरी मुस्कान उसकी खुशी को जाहिर कर रही थी। इस पल के लिए उसने एक लंबा इंतजार किया था, जब इस मिलन में जुदाई की बेचैनी न समाई हो। अहाना इन बातों से अनजान नहीं थी। वो जानती थी कि अक्षय ने उसके लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत से त्याग किए हैं, रूपाली जी को संभाला है, जो आसान तो बिल्कुल नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उससे महीनों महीनों दूर रहा है। बहुत सब्र से काम लिया था उसने, और अहाना खुश थी उसे अपने जीवन साथी के रूप में पाकर। जितना साथ अक्षय ने दिया, शायद उसके स्थान पर कोई और नहीं देता। अहाना कुछ पल यूं ही बड़े ही प्यार से उसे निहारती रही। फिर उसने घड़ी में समय देखा और बेहद आराम से अपनी कमर पर लिपटी उसकी बाहों को हटाते हुए उससे दूर हटी और उठकर बाथरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाहर आई, नजरें बेड की ओर घुमाई, जहां अक्षय सिर्फ लोअर में सोया हुआ था। बेड पर बिछी चादर पर पड़ी सिलवटें बीती रात की कहानी बयां कर रही थीं और अक्षय के लबों पर सजी लिपस्टिक उनके मिलन की गवाही दे रही थी। उनके मोहब्बत की खुशबू से अब भी वहां बिखरी हवाएं महक रही थीं और उन प्यार भरे एहसासों की गर्माहट उसके दिल को अजीब सा सुकून पहुंचा रही थी। अहाना मुस्कुराई, फिर बालकनी का दरवाज़ा खोला और पर्दों को हटा रही थी, जब अक्षय ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहें अक्षय के कमर के इर्द गिर्द लिपटी थीं और चेहरा उसके कंधे पर टिका था। उसकी गर्म बहकती सांसें उसके गर्दन पर बिखर रही थीं। अक्षय की आंखें बंद थीं, शायद नींद की खुमारी अब भी नहीं उतरी थी, पर मोहब्बत का नशा सर चढ़ने लगा था और उसके लब अहाना के गाल पर आ ठहरे थे। गुड मॉर्निंग जान, अक्षय की करीबियों के एहसास ने एक बार फिर उसकी धड़कनों को बागी बना दिया था और लबों पर दिलकश मुस्कान बिखर गई थी। उसने अक्षय की बाहों पर अपनी बाह लपेटते हुए उसके सीने से अपना सर लगा दिया। गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी उठ गए आप, हमने तो सुना था आप 2-3 से नाइट ड्यूटी पर थे और आज छुट्टी पर हैं, आज तो आपको दोपहर तक सोना चाहिए था। आप उठ गईं और मुझसे दूर चली गईं तो मेरी नींद भी खुल गई। अक्षय ने उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को कसते हुए अलसाए स्वर में जवाब दिया, जिसे सुनकर साफ जाहिर हो रहा था कि अब भी उसे नींद आ रही थी। आप 3 दिन के थके हुए हैं, अभी भी नींद आ रही है आपको, जाकर सो जाइए, हम नहीं हटाएंगे पर्दे और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। आप चली जाएंगी तो नींद किस कमबख्त को आएगी। अक्षय ने बुरा सा मुंह बनाया और अहाना जवाब में कुछ कह ना सकी, क्योंकि जाना तो उसे था, उसकी मजबूरी थी जाना। कुछ पल की खामोशी के बाद अहाना ने अक्षय की बाहों को अपनी कमर पर से हटाया और उसकी ओर पलटते हुए बोली, चलिए हम सुला देते हैं आपको। अहाना ने उसकी बाह पकड़ी और अगले ही पल अक्षय ने एक झटके के साथ उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे अहाना का सर उसके चौड़े खुले सीने से आ टकराया। अहाना पहले तो अचानक उसके ऐसा करने पर चौंक गई, फिर सर उठाए, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बड़ा बड़ा किए हैरान परेशान सी उसे देखने लगी। वहीं अक्षय ने इंटेंस निगाहों से उसे देखा, फिर अपनी उंगलियों में उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को उलझाते हुए कातिलाना मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, वैसे मैंने अभी ध्यान दिया कि आप मेरी टी शर्ट में और भी क्यूट लग रही हैं। इस ओवरसाइज शर्ट में आप बिल्कुल एक क्यूट से खरगोश के बच्चे जैसी लग रही हैं। आप बस हमें छेड़ते रहा कीजिए। अहाना के हसीन मुखड़े पर नाराजगी के भाव उभरे थे, हया की सुर्खी गालों पर आ बिखरी, लरसती पलकों ने गुलाबी गालों को चूम लिया और अगले ही पल उसने शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। अक्षय अपनी शर्मीली अदा पर ठहाके लगाकर हंस पड़ा और उसे अपनी पनाहों में समेट लिया। अनु, अक्षय ने आंखें खोलकर अहाना को देखा, जो उसके सिरहाने बैठी उसके बालों में अपनी नाजुक उंगलियों को घुमा रही थी, ताकि उसे नींद आ जाए और वो यहाँ से जा सके। अहाना ने भी निगाहें घुमाकर उसे देखा। मुझे कुछ बताना है आपको। अक्षय अब काफी गंभीर लग रहा था, मतलब बात जरूरी भी थी और सीरियस भी। कहिए, हम सुन रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले ये बताना चाहता था, पर तब कुछ भी पक्का नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। सोचा कि एक बार सब फाइनल हो जाए तब आपको बताऊंगा। अब हो गया सब फाइनल, अब बता सकते हैं आप हमें वो बात, या अगर अभी भी नहीं बता सकते तो हम इंतजार कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। अहाना एक समझदार और अंडरस्टैंडिंग लड़की थी और उसकी यही खूबियां उसे औरों से खास बनाती थीं। अक्षय उसकी बात सुनकर हौली से मुस्कुराया, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सब फाइनल हो गया है अब। तो बताइए हमें, क्या बताना चाहते हैं आप?
मेरा दिल्ली एम्स में सिलेक्शन हो गया है और अगले महीने से मुझे वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अक्षय ने जैसे ही इस रहस्य पर से पर्दा उठाया, आहाना खुशी से उछल पड़ी। सच्ची ये तो बहुत अच्छी बात है, एम्स हॉस्पिटल का तो पूरे देश में नाम है और बहुत कम खुशनसीब लोगों को वहाँ काम करने का मौका मिलता है। पर आप तो अपना क्लिनिक खोलना चाहते थे ना? उसकी मुस्कान अब कुछ फीकी पड़ गई थी और परेशान निगाहें अक्षय पर आकर ठहर गईं। अक्षय ने उसकी परेशानी समझते हुए मुस्कुराते हुए आगे कहा, वो तो अब भी चाहता हूँ, पर प्लान थोड़ा सा बदल दिया है मैंने। जो पैसे मैंने क्लिनिक के लिए इकट्ठे कर रखे थे वो मैंने अपने फ्रेंड को दिए हैं। उसे घर लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे तो उसकी हेल्प कर दी। एम्स में काम करना हमेशा से मेरा सपना रहा था। इसी बीच ये मौका हाथ लगा तो मैंने अपनी किस्मत चेक करने के लिए अप्लाई कर दिया और 2 दिन पहले ही मुझे कन्फर्मेशन मेल आया है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं सोच रहा था कुछ अपने पेशे का इस्तेमाल करके देश की सेवा कर लूं, उसके बाद जब रिटायर होने वाला होऊंगा तो नर्सिंग होम खोल लूंगा जहां उन लोगों का इलाज किया जाएगा जिनकी केयर करने वाला उनके परिवार में कोई नहीं। बहुत अच्छा सोचा है आपने, हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। आहाना एक बार फिर खुशी से चहक उठी थी। उसकी खनकती आवाज उसकी प्रसन्नता जाहिर कर रही थी और अक्षय उसका साथ पाकर मुस्कुरा उठा था। ऐसे ही हम सफर की ख्वाहिश थी, जो उसका साथ निभाए उसकी खुशी में खुश हो, जिसके लिए उसके सपने वही मायने रखते हों जो उसके खुद के लिए रखते हैं। आपने मम्मी पापा को बताया? आहाना ने सवाल किया और अक्षय अपनी सोच से बाहर आया। नहीं, आज बताने वाला हूँ, सोचा पहले आपको बता दूँ। ठीक है, तो आप आज नाश्ते के वक्त उन्हें ये खुशखबरी दीजिएगा। सब बहुत खुश होंगे आपकी इस कामयाबी पर और हम आपकी इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए आज मीठे में आपकी पसंद के नारियल के लड्डू बनाएंगे। आहाना ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, अक्षय ने सख्ती से इनकार में सर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं कुछ भी बनाने की, मैं बाहर से मिठाई ले आऊंगा। वैसे ही सुबह सुबह आपको सबकी पसंद का खाना बनाने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, बेवजह अपना काम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इस सख्ती में आहाना के लिए उसकी परवाह ही झलक रही थी, जिसे महसूस करते हुए आहाना मुस्कुराई और उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोली, अच्छा नहीं बनाएंगे, अन वैसे मंगवा लेंगे। अब आप सो जाइए, हमें जाना भी है। आहाना ने अपनी दूसरी हथेली से उसकी आंखों को ढक दिया। जाने ये बीते 3 दिनों की थकान का असर था या आहाना की मौजूदगी का कि अक्षय एक बार फिर नींद की वादियों में कहीं खो गया था। और उसके सोने के बाद आहाना आराम से उठकर बिना आहट किए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी।
नीचे जाते जाते उसे 7 बज चुके थे। रूपाली जी ड्रॉइंग रूम में बैठी जलती निगाहों से उसे घूर रही थी। साफ जाहिर था कि उसके देर से आने पर बहुत गुस्सा है, पर आज उन्होंने कुछ कड़वी बात नहीं निकाली अपने मुंह से। चाय की चुस्कियां लेते हुए वे बस गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रही थीं। आहाना सर झुकाए रसोई की ओर बढ़ गई, जहां से आती खटर पटर की आवाज किसी के वहां होने की सूचना दे रही थी। रसोई में पहुंची तो फलक को नाश्ते की तैयारी में जुटा पाया। सॉरी, हमारी आंख नहीं खुली इसलिए आने में जरा देर हो गई। रूपाली जी से तो उसकी कुछ कहने की हिम्मत न हुई, पर यहां फलक को उसने अपनी देर से आने की सफाई जरूर दे दी थी और जवाब में फलक ने शरारत से आंखें मटकाते हुए छेड़ दिया था।